आशिका को अभिमान के घर में रहते हुए लगभग 10 दिन बीत चुके थे और वहीं से वो अभिमान का काम भी संभाल रही थी। इन 10 दिनों में आशिका अपनी सिक्योरिटी को लेकर काफी बेफिक्र हो चुकी थी। अभिमान के सीक्रेट हाउस के बारे में कोई नहीं जानता था। ऊपर से वो ऑफिस के ऊपर बने हुए होने की वजह से उसे काम पर आने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। इन 10 दिनों में अभिमान का ज्यादातर टाइम आशिका के साथ ही बीता था। हालांकि उनके बीच अभी कोई रिश्ता नहीं बना था, पर फिर भी आशिका अब ठीक से अभिमान से बात करने लगी थी। संडे होने की वजह से ऑफिस बंद था और अभिमान सुबह सुबह जल्दी ही आशिका के पास पहुंच गया था। आशिका ने इतनी सुबह उसे अपने घर पर देखा तो उसने हैरानी से कहा, कल रात आपने कहा था कि आप छुट्टी लेने वाले हैं मिस्टर राजवंश, फिर ऑफिस आने का कोई कारण, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई ना? अभिमान ने आईज रोल की और जवाब में कहा, सब ठीक है, और सबसे पहले मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मिस्टर राजवंश बुलाना बंद करो, तो मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, फिर इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसे ही ठीक है, आशिका ने बिना किसी भाव के कहा। वो नहीं चाहती थी कि उसके इमोशंस किसी भी तरह से अभिमान से जुड़े। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पिछले 10 दिनों में तुमने एक कदम भी बाहर नहीं रखा है, क्या तुम्हारा बाहर घूमने को मन नहीं करता? अभिमान ने पूछा। मुझे इसकी आदत है, बहुत बार तो मैं 1-2 महीने तक घर से बाहर नहीं निकली हूँ। वैसे भी बाहर जाने में खतरा है, मुझे जो चाहिए होता है वो सब यहाँ मिल जाता है, तो क्या जरूरत बाहर जाने की? आशिका ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। अभिमान को कई बार वो काफी बोरिंग लगती थी। ना उसे किसी चीज का शौक था और ना ही वो हैकिंग के अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग करना चाहती थी। यहाँ तक कि उसके खाने के मामले में भी कोई खास चॉइस नहीं थी। क्या तुम जानती हो कि तुम दुनिया की सबसे बोरिंग इंसान हो ऐश? अभिमान ने टीजिंग वे में कहा। थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट मिस्टर राजवंश, आशिका ने सार्कास्टिक अंदाज में जवाब दिया। उसे अभिमान या किसी और की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। चलो छोड़ो, अब मैं काफी सीरियस होकर कह रहा हूँ, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है, सोई भी तुम काफी कम हो, क्यों ना बाहर घूमने चले? अभिमान ने गंभीर आवाज में कहा। बोलते हुए उसने आशिका की तरफ गौर से देखा। उसने अभी भी वही लूज ट्राउजर और लूज सी शर्ट पहनी हुई थी, जो कि लड़कियों के हिसाब से नहीं बल्कि लड़कों के हिसाब से डिजाइन की हुई थी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करने की जरूरत है? कभी लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर देखे हैं? अच्छा, तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार कब लड़कियों की तरह कपड़े पहने थे? मेकअप का तो तुम्हारा दूर दूर तक नाता नहीं होगा, अभिमान ने पूछा। अभिमान का कहना सही था। आशिका ने बचपन में जरूर 1-2 बार लड़कियों की तरह कपड़े पहने थे, और वो भी सेलिना के छोड़े हुए कपड़े होते थे। अभिमान के ये पूछने पर कि वो आखिरी बार कब लड़कियों की तरह तैयार हुई थी, आशिका को वो दिन याद आ गया जब वो स्काई से मिलने गई थी और उसने जबरदस्ती उसे तैयार करवाया था। आशिका ने आज से पहले इतनी महंगी ड्रेस कभी नहीं पहनी थी और ना ही मेकअप किया था। तैयार होने के बाद वो बहुत खूबसूरत भी लग रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि तृप्ति उसे शादी में ले जाने के बहाने खुद उसी की शादी करवाने जा रही थी। वो दिन आशिका की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जिसकी वजह से आज तक उसे छिपते हुए घूमना पड़ रहा था। मुझे वो दिन याद नहीं करना है, और मुझे ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद है, आशिका ने कड़वाहट भरे लहजे में जवाब दिया। आशिका का चेहरा उतर गया था। अभिमान वहां उसका मूड अच्छा करने के लिए आया था। जिस हिसाब से अचानक आशिका के हाव भाव बदले थे और वो परेशान हो गई थी, उस पर अभिमान समझ गया था कि उसने आशिका की किसी कड़वी याद को ताजा कर दिया है। ओके, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ बुरा याद आया है। मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे, मैं बस यही चाहता था तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। एनी टाइम भी काम करना सही नहीं रहता है, चलो ना बाहर घूमने चलते हैं, अभिमान रिक्वेस्टिंग वे में बोला। मुझे इसकी आदत है, मैंने कहा ना तुम मेरे लिए परेशान मत हो, आशिका बोली। इसमें परेशानी कैसी, जिद मत करो और आ जाओ, मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तुम वैसे भी मेल कलेक्शन पहनती हो, तो अपने लिए भी कुछ देख लेना, अभिमान काफी प्यार से आशिका को फोर्स कर रहा था। आशिका ने गहरी सांस ली और हां में सिर हिला दिया था। रिहान भी उसे इसी तरह फोर्स करता था, पर आशिका उसे ज्यादातर मना कर देती थी। रिहान को उसकी न सुनने की आदत हो गई थी, तो अब उसने पूछना ही छोड़ दिया था। अभिमान आज जिस तरह आशिका के इतनी बार मना करने के बावजूद खुद की शॉपिंग का बहाना बनाया, उसके बाद आशिका खुद को रोक नहीं पाई थी। ठीक है, फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हम खाना भी बाहर ही खाएंगे, आशिका के हाँ कहते ही अभिमान काफी एक्साइटेड हो गया था। आशिका चेंज करने के लिए रूम में चली गई थी, तो वहीं अभिमान बाहर था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आशिका ज्यादा बोलती नहीं थी, बाकी लड़कियों से अलग वो अपने काम से मतलब रखती थी और ज्यादातर उसी में डूबी रहती थी। उसने अपने बारे में कुछ खास अभिमान को बताया भी नहीं था, फिर भी उसके साथ रहना उसे अच्छा लगता था। कम से कम तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो अच्छा बनने का दिखावा करते हैं, तुम दुनिया की सबसे बोरिंग लड़की हो ऐश, और तुम्हारा बिहेवियर बहुत रूड है, स्टिल मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अभिमान ने मन ही मन कहा। जब से आकाश के फोर्स करने पर अभिमान ने शादी करने के लिए हाँ कही थी, उसके बाद आशी ने ऑफिस में आना कम कर दिया था और वो इतना परेशान भी नहीं करती थी। आशी का पूरा ध्यान इस वक्त आशिका को ढूंढने में था। कुछ ही देर में चेंज करके आशिका वापस आ गई थी। उसने खुद के चेहरे पर मास्क लगाया था और इतने दिनों में एक भी बार उसने अपने ब्राउन लेंसेज पहनना नहीं भूले थे। उसकी आंखों का कलर काफी यूनिक था और बहुत कम लोगों की आंखों का रंग वैसा होता था। अगर आशिका अपनी आंखों का रंग नहीं छुपाती तो अब तक वो काफी लोगों की नजरों में आ चुकी होती। अभिमान और आशिका साथ में गाड़ी के अंदर थे। कुछ ही देर में वो मॉल पहुंच चुके थे। आशिका ने देखा अभिमान मेल सेक्शन में जाने के बजाय फीमेल सेक्शन में जा रहा था। अभिमान को रोकने के लिए आशिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घूरते हुए कहा, आपने कहा था कि आपको अपने लिए शॉपिंग करनी है, फिर यहाँ क्यों जा रहे हो? देखो, अगर आपको ये लग रहा है कि आप मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स कर सकते हैं तो इन कपड़ों को पहनने के लिए भी मना लोगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। मुझे लड़कियों की तरह तैयार होना पसंद नहीं है। आई विश कि मैं एक लड़का होती। जब तुम लड़की होकर ही इतना बेस्ट हो तो फिर लड़का होने की क्या जरूरत है? बाकी खरीदने को कौन कह रहा है? बस मेरी इच्छा है कि एक बार मैं तुम्हें लड़कियों की तरह तैयार हुआ देखूं, अभिमान ने हल्का मुस्कुराकर कहा। ओ रियली? मैं आपका काम करने के लिए हूँ मिस्टर राजवंश, आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए नहीं, आशिका ने चिढ़ते हुए कहा और वहां से जाने लगी कि अभिमान उसके सामने आ गया था। प्लीज, इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो, ऐसा समझ लो तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड तुम्हें ऐसा करने के लिए कह रहा है, अभिमान ने प्लीडिंग वॉइस में कहा। लेकिन हम दोस्त नहीं हैं, आशिका ने सख्त लहजे में जवाब दिया। अगर नहीं है तो बन सकते हैं, अगर तुम मेरी इस डिमांड को पूरा कर दो तो मैं पक्का तुम्हें अपना फ्रेंड बना लूंगा, अभिमान ने भौहें उठाकर कहा। उसकी इस हरकत पर आशिका को मन ही मन हंसी आ रही थी। वो कितना भी इस बात को इग्नोर करे लेकिन उसे भी अभिमान के साथ रहना अच्छा लगता था। और मेरे बारे में क्या ख्याल है मिस्टर राजवंश, क्या मैं सच में आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ? आशिका ने सिर हिलाकर कहा।
उसका जवाब सुनकर अभिमान का मुंह बन गया था। आशिका ने गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया था। उसके इतना जिद करने और प्यार से मनाने के चलते आशिका फीमेल सेक्शन में गई। हालांकि अभी भी उसने अपने लिए किसी फैंसी ड्रेस के बजाय सिंपल वन पीस फ्रॉक सिलेक्ट किया था। आशिका ट्रायल रूम से बाहर नहीं आना चाहती थी, इसलिए उसने अभिमान को आवाज़ लगाकर वहीं बुला लिया था। उस डस्की पिंक स्लीवलेस ड्रेस में वो काफ़ी अलग और अच्छी लग रही थी। आशिका नहीं जानती थी कि उसके इस तरह आवाज़ लगाने पर सिर्फ अभिमान नहीं बल्कि वहाँ शॉपिंग कर रही सेलिना ने भी उसे नोटिस कर लिया था। जैसे ही अभिमान आशिका के पास पहुँचा, दूसरी तरफ से सेलिना तेज़ कदमों से चलते हुए उसके सामने आ गई थी। सेलिना को अपने सामने देखकर अभिमान और आशिका दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ गया था। अभिमान तुरंत आशिका के आगे आ गया था, लेकिन सेलिना ने उसे अपने हाथ से दूसरी तरफ किया और तिरछा मुस्कुराते हुए आशिका की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह, काफ़ी खूबसूरत लग रही हो इस तरह के कपड़ों में। वैसे मानना पड़ेगा, तुम अपनी इस एवरेज शक्ल के साथ भी लड़कों को अपने पीछे पागल कर ही देती हो, बोलते हुए सेलिना ने अभिमान की तरफ देखा। आशिका से मिलने की खुशी से ज्यादा उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो अभिमान के साथ थी। आशिका ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, लिसन, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। ऐसे कैसे लेना देना नहीं है डियर सिस्टर, तुम्हें आइडिया भी है? तुम्हारी वजह से तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हमारी नाक में दम करके बैठा है। हमें यहाँ एलए से इंडिया आना पड़ा और पिछले इतने दिनों से तुम्हें ढूंढना पड़ रहा है क्योंकि तुम अपनी शादी से भाग गई थी। इस लड़के को तुम्हारी सच्चाई पता भी है या नहीं? सेलिना दांत पीसते हुए बोली। फिर वो अभिमान की तरफ देखकर बोली, इसकी भोली शक्ल के पीछे मत जाना, ये बहुत चालबाज लड़की है। इसकी पहले से ही शादी होने वाली थी और ये हमें फंसाकर उस शादी से भाग गई। आशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने भारी आवाज में कहा, तो मैं तुम लोगों को फंसाकर निकल गई थी या तुम लोग मुझे फंसाना चाहते थे? लिसन सेलिना, मुझे कोई सीन क्रिएट नहीं करना है। हम लोगों के बीच बहुत पहले ही रिश्ता टूट चुका है, मुझसे दूर रहो। मुझे भी तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। चुपचाप मेरे साथ मॉम के पास चलो और वही डिसाइड करेगी कि अब तुम्हारे साथ क्या करना है, सेलिना ने तेज आवाज में कहा और जबरदस्ती आशिका के बाजू को पकड़ लिया था। अभिमान ने अपनी तरफ से आशिका की सेफ्टी का कितना भी ख्याल क्यों ना रखा हो, लेकिन आज उसकी एक जिद की वजह से वो मुसीबत में आ गई थी और इस वजह से अभिमान को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वहीं आशिका समझ गई थी कि अब वो कितना भी भाग ले, अब उसके लिए तृप्ति और स्काई से पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। आशिका ने अब खुद को सेलिना से छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी थी क्योंकि ये बेकार था। अभिमान ने देखा कि आशिका की आंखें नम हो गई थीं। इतने दिनों में उसने पहली बार उसके चेहरे पर किसी तरह का एक्सप्रेशन देखा था और वो भी दर्द के भाव। ये देखकर उसे आशिका से ज्यादा तकलीफ हो रही थी। सेलिना को रोकते हुए अभिमान उसके पीछे आ रहा था, लेकिन अब उसका भी कुछ कहना किसी काम का नहीं था। आशिका को खींचते हुए सेलिना तृप्ति को कॉल करने जा रही थी ताकि वो स्काई को लेकर वहां पहुंच जाए।